हम लोग अवच्छेदक और अवच्छिन्न की बात कर रहे थे, जो एक दूसरे से अलग कर दे तो पृथक कारक जो है, अलग कारक जो है उसका हो गया अवच्छेदक, और जो अलग होता है उसको कहते हैं अवच्छिन्न। तो मैं कप और ग्लास का उदाहरण दे रहा था। कप को कहेंगे मान लीजिए चाय पात्रम, और ग्लास को कहेंगे पानीय पात्रम, चाय पान पात्रम। तो जो खाली जगह होती है उसी का नाम है आकाश, शून्यम आकाशम, शून्य को आकाश कहा जाता है। तो ये जो है ना पानीय पात्र में जो रहने वाला आकाश है, और चाय पात्र में रहने वाला जो आकाश है उसमें पात्र हो गया अवच्छेदक। क्यों? क्योंकि पानीय पात्र वाले आकाश से ये चाय पात्र जो है ना, उस आकाश से चाय पात्र रूपी पात्र जो है ना हुआ, उसका अवच्छेदक होता है, उससे उसको अलग करता। और चाय पात्र में रहने वाला जो आकाश है उस आकाश से ग्लास में रहने वाला जो आकाश है उसको कौन अवच्छेद करता है, कौन पृथक करता है? तो पानीय पात्र करता है। तो जिसको जो अलग करता है, जैसे चाय पात्र और पान पात्र, ये अवच्छेदक हो गया, और जो अलग होता है आकाश वह अवच्छिन्न हो गया। तो ग्लास में रहने वाला जो आकाश है उसको हम क्या कहेंगे शास्त्र की भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में, उसको कहेंगे पानीय पात्रावच्छिन्न आकाश। और कप में रहने वाला जो आकाश है उसको क्या कहेंगे? चाय पात्रावच्छिन्न आकाश। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए गाय है और क्या है, हाथी है। तो गाय भी पशु है और हाथी भी पशु है, तो पशुत्वेन तो दोनों समान है ना, पशु के रूप में दोनों ही समान है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते अगर पशु धर्म के आधार पर देखें। तो उसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे? तो ऐसा कोई धर्म ढूंढोगे जो कि केवल गाय में ही रहता हो, जो केवल हाथी में ही रहता हो, गज में ही रहता हो, तो उस धर्म के आधार पर हम दोनों पशु को अलग कर सकते हैं। वो धर्म कौन है? तो गज में गजत्व धर्म है और गो में गोत्व धर्म है। तो गोत्व बान कौन होगा? गो। और गजत्व बान कौन होगा? गज। बान समझते हैं ना, बान माने युक्त। तो गोत्व बान हो गया है, होता है गो, और गजत्व बान होता है गज। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पशु हैं, गो भी पशु है और गज भी पशु है, उसमें हम अवच्छेदक धर्म ले लिया कौन सा? गजत्व धर्म और गोत्व धर्म। इस धर्म के आधार पर एक दूसरे से पशु जो है ना अलग हो जाएगा। कहेंगे कि गोत्व से अवच्छिन्न, तो गोत्व अवच्छेदक हुआ, गजत्व अवच्छेदक हुआ, और जो अलग होने वाला है कौन? गो और गज हुआ, अवच्छिन्न कहलाएगा। तो गोत्व हुआ अवच्छेदक, और गोत्व से अवच्छिन्न कौन हुआ? गो। ऐसे ही गजत्व हुआ अवच्छेदक, और गजत्व से अवच्छिन्न कौन हुआ? गज। तो गो को कहेंगे गोत्वावच्छिन्न गो, और गज को कहेंगे गजत्वावच्छिन्न गो, गजत्वावच्छिन्न गज। तो इस तरह से एक से दूसरे को जो अलग करता है, ये अलग करने वाला कौन होता है? या तो धर्म होता है, या संबंध होता है, या जाति होती है, या गुण होता है, ये सब, या क्रिया होती है, इन ये सब अवच्छेदक होते हैं। माने अपने जो से समान जो होता है ना उससे अलग करता है। जैसे अभी देखा गो से समान पशु है कौन? गज। लेकिन गोत्व ने क्या किया? गज से गो को अलग कर दिया। ऐसे ही गजत्व के, गज के समान गो है, लेकिन गजत्व ने क्या किया कि गज के समान जो गो है उस गो से गज को अलग कर दिया, क्योंकि गजत्व केवल गज में रहेगा, गोत्व केवल गो में रहेगा। इस तरह से अब जो अलग करने वाला है वह अवच्छेदक होता है, और जो अलग होता है वह अवच्छिन्न होता है। तो इस तरह से आप ऐसे ही देख लिए अपनी क्लास में भी, जो है एक दो बच्चे हैं, मान लो एक का नाम है देवदत्त, एक का नाम है यज्ञदत्त, दोनों जो हैं मानव हैं। तो मानवत्वेन जो है दोनों समान है, मानवत्वेन, त्वेन मतलब मानव रूप से, तो मानवत्वेन जो है दोनों समान है, देवदत्त और यज्ञदत्त। फिर दोनों अपने से समान से कैसे अलग होगा? तो वहाँ भी अवच्छेदक का प्रयोग करेंगे। देवदत्त में कौन सा धर्म है? देवदत्तत्व। यज्ञदत्त में कौन सा धर्म है? यज्ञदत्तत्व। तो यज्ञदत्तत्व जो है यज्ञदत्त को देवदत्त से अलग कर देगा, और देवदत्तत्व जो है वह देवदत्त को यज्ञदत्त से अलग कर देगा। तो अलग करने वाला माने अवच्छेदक कौन हुआ? देवदत्तत्व और यज्ञदत्तत्व। तो देवदत्त हो गया देवदत्त, देवदत्तत्वावच्छिन्न, और यज्ञ दत्त हो गया, यज्ञ दत्तत्वावच्छिन्न। तो जो अलग होता है वो अवच्छिन्न कहलाता है, और जो अलग करता है एक दूसरे से उसको अवच्छेदक कहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग बिल्कुल पक्का समझ गए होंगे। ऐसे ही जहाँ पर भी शून्य होता है वह शून्य आकाश कहलाता है। और मैंने कहीं आसमान में आप देखते हैं ना, कुछ नहीं रहता है, शून्य रहता है, तो वह भी आकाश है। इसको आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ छिद्र रहता है वह आकाश है। अब जैसे देखिए, नाक में छेद रहता है ना, तो वह वहाँ भी आकाश है। कान में छेद रहता है तो वहाँ भी आकाश है। मुंह में छेद रहता है तो वह वहाँ भी आकाश है। तो आकाश जो है ना सर्वत्र व्याप्त रहता है। उस अब एक दूसरे आकाश से जो है ना, एक दूसरे आकाश को अलग करने के लिए कुछ न कुछ अवच्छेदक मानना होगा, ठीक है। तो कान में रहने वाला जो आकाश है, ये क्या कहा, सूत्र किसे कहते हैं, माने कर्ण इंद्री किसको कहते हैं, कहा नभः स्रोत्रम, माने नभः जो है वह स्रोत्र कहलाता है। नभः मतलब आकाशः, माने आकाश जो है वह स्रोत्र इंद्रिय है। अब आकाश तो अनंत है, तो उसमें से इस स्रोत्रेंद्रिय वाले आकाश को कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ भी अवच्छेदक का प्रयोग करेंगे। यहाँ अवच्छेदक कौन है, कर्ण सस्कुली, ठीक है। और अवच्छिन्न कौन है, नभ माने आकाश। तो अब एक नया शब्द आपने सुना, कर्ण सस्कुली। ये कर्ण सस्कुली क्या है, तो कान में रहने वाला जो छिद्र है, उस छिद्र के चारों ओर जो वो मांस की का पट्टा लगा हुआ है, छिद्र के चारों ओर जो मांस और चमड़े का जो है ना वो पट्टा लगा हुआ है ना, उसी का नाम है कर्ण सस्कुली। ऐसे कर्ण माने कान और सस्कुली माने रोटी। ये जो हम रोटी चावल खाते हैं ना, उस रोटी को भी संस्कृत में सस्कुली कहा जाता है। तो एक छोटी रोटी की तरह जो है ना वो कान दिखता है, इसलिए उसको हम सस्कुली कहते हैं। तो कर्ण सस्कुली जो है श्रोत्रेंद्रिय वाले आकाश को अलग करेगा। तो कर्ण सस्कुली हो गया अवच्छेदक, और किसको अलग कर रहा है, नभ को अलग कर रहा है, आकाश को अलग कर रहा है, तो वह हो गया अवच्छिन्न। तो इस तरह से ऐसा जो नभ है, माने कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो नभ है, वही नभ जो है वह श्रोत्रेंद्रिय होता है। इसलिए कहा लक्षण में कि कर्ण सस्कुली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, कर्ण सस्कुली जो अवच्छेदक है उससे जो अवच्छिन्न नभ है वह नभ ही जो है वह श्रोत्रेंद्रिय कहलाता है। ऐसा ही नासिका में जो नभ है, नासिका में भी छेद रहता है ना, तो वहाँ भी नभ है। उसको कैसे कहेंगे, उसको कहेंगे कि नासिका अवच्छिन्नम नभः, माने नासिका से जो अवच्छिन्न नभ है, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब एक से दूसरे को जो अलग कर दे, यहाँ पर किसने अलग किया, नासिका वाले आकाश से कान वाले आकाश को किसने अलग किया, कर्ण सस्कुली ने अलग किया, इसलिए कर्ण सस्कुली अवच्छेदक हो गया। और जिस जो अलग हुआ कौन, आकाश, वह अवच्छिन्न हो गया। तो कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो नभ है वही स्रोत है, माने कर्ण सस्कुली में रहने वाला जो आकाश, वह आकाश जो है वह श्रोत्रेंद्रिय है। आकाश का मतलब छिद्र। आगे बढ़ते हैं, स्रोत्रस्य आकाशमकत्वात्। अब इस तरह से श्रोत्रेंद्रिय जो है उसका, उसकी आत्मा क्या है, आत्मा माने स्वरूप। तो श्रोत्र का स्वरूप क्या है, तो वह आकाशात्मक है, माने उसका स्वरूप जो है आकाश वाला है, माने आकाश स्वरूप ही श्रोत्रेंद्रिय होता है। छिद्र स्वरूप ही जो है श्रोत्रेंद्रिय होता है, शून्य स्वरूप ही जो है श्रोत्रेंद्रिय होता है। तो श्रोत्रस्य आकाशमकत्वात्, श्रोत्र जो है वह आकाशात्मक है, माने उसका स्वरूप आकाश वाला होता है। और शब्दस्य च आकाश गुणत्वात्, और शब्द जो है वह आकाश का गुण होता है। तो इस तरह से अगर शब्द गुण है और उसका गुणी कौन होगा, तो आकाश होगा। तो श्रोत्रेंद्रिय जो है आकाशात्मक, जो श्रोत्रेंद्रिय वह गुणी है, और शब्द जो है वह गुण है। और गुण गुणिनोह समवाय संबंध, आप मालूम है आपको कि गुण गुणी के बीच समवाय संबंध होता है, इसलिए यहाँ पर समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है। तो अब फिर से एक बार देख लीजिए पूरे पैरा को, यदा श्रोत्रेंद्रियेन शब्दो गृह्यते, जब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, तदा माने तब उस समय में श्रोत्रम इंद्रियम, श्रोत्र जो है इंद्रिय की भूमिका में होता है, शब्द अर्थ, शब्द जो है विषय की भूमिका में होता है, अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव, और इन दोनों का सन्निकर्ष जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वो समवाय नाम का होता है। अब श्रोतेंद्रिय कैसा होता है, तो कर्ण संस्कुली अवच्छिन्नम नवः श्रोत्रम, कर्ण संस्कुली से जो अवच्छिन्न है, पृथक है, माने कान के मध्य भाग में स्थित जो आकाश है, वही जो है वह श्रोतेंद्रिय है, और श्रोत्र इंद्रिय जो है वह आकाशात्मक होता है, वह गुणी है, और शब्द जो है उस आकाश का गुण होता है, तो गुण और गुणी के बीच में समवाय नाम का संबंध होता है, गुण गुणिनोश्च समवायात्। इस तरह से समवाय सन्निकर्ष की चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई। अब चार सन्निकर्ष हो गया, पांचवा जो सन्निकर्ष है वह है समवेत समवाय सन्निकर्ष नाम का। तो कहा कि कदा पुनः समवेत समवाय सन्निकर्ष, ऐसा सन्निकर्ष कब होता है, तो आगे बताया कि यदा शब्द समवेतम शब्दत्वादि सामान्यम श्रोतेन्द्रियेण गृह्यते। कहा कि यहाँ भी तीन चीजें हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, घट घट रूप घट रूपत्व, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ना शब्द और शब्दत्व, ठीक है, दो है यहाँ, दो ही है अभी, तो शब्द और शब्दत्व। तो शब्द किस में रहेगा, आकाश में रहेगा, शब्दत्व किस में रहेगा, शब्द में रहेगा, गोत्व किस में रहेगा, गो में रहेगा, ठीक है, ऐसे ही घट घट ये घटत्व किस में रहेगा, घट में रहेगा, तो शब्दत्व किस में रहेगा, शब्द में रहेगा, और शब्द किस में रहेगा, तो आकाश में रहेगा, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है, और गुण जो है ना अपने गुणी में ही रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीला कमल है, तो कमल गुणी हो गया, और नीला नील गुण हो गया, वो नीला गुण किस में रहता है, उस कमल में ही रहता है, तो गुण हमेशा गुणी में रहता है, और किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। तो समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होता है, तो बता रहे हैं कि यदा शब्द समवेतम शब्दत्वादि सामान्यम गृह्यते, जब शब्द में समवेत, समवेत माने मालूम है ना, कई बार बात हो गई अब, कि समवाय संबंधेन स्थितः समवेतः, समवाय संबंध से जो वस्तु स्थित हो उसको हम समवेत कहते हैं। तो शब्द में जो समवेत है, माने शब्द में जो समवाय संबंध से स्थित है, कौन, शब्दत्वादि सामान्य, सामान्य माने जाति, तो शब्दत्वादि जाति जो है उसका जब श्रोत्रेन्द्रिय गृह्यते, उसका जब श्रोत्रेन्द्रिय से ज्ञान होता है, तदा श्रोत्रम इंद्रियम, उस समय में श्रोत्र जो है इंद्रिय रूप में होता है, शब्दत्वादि सामान्य जो है अर्थ रूप में होता है, और अनयोः सन्निकर्षः समवेत समवाय एव, और इन दोनों का सन्निकर्ष समवेत समवाय नाम का होता है। क्यों होता है, तो कहा कि श्रोत्र से में समवेत जो शब्द है, उस शब्द में शब्दत्व का जो है समवाय संबंध होता है। ये सब आप जानते हैं कि समवेत समवाय सन्निकर्ष है ना, तो समवेत से पहले इंद्रिय जोड़ लीजिए, तो इंद्रिय समवेत समवाय, माने इंद्रिय से जो समवेत है, इंद्रिय यहाँ पर कौन है, श्रोत्र इंद्रिय है, उसमें समवेत कौन है, माने श्रोत्र इंद्रिय में समवाय संबंध से रहने वाला कौन है, शब्द है, और उस शब्द में समवाय संबंध से रहने वाला कौन है, शब्दत्व है। तो इस तरह से समवेत समवाय नाम का सन्निकर्ष हो जाता है। वही कहा, श्रोत्र से समवेत जो शब्द, उस शब्द में शब्दत्व का समवाय संबंध होता है, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय और शब्दत्व सामान्य के बीच में समवेत समवाय नाम का सन्निकर्ष होगा, ठीक है। अब आगे जो है छठवें सन्निकर्ष की बात हो रही है कि कदा पुनः विशेषण विशेष भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। ये जो छठवां है विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष, ये कब होता है, तो इसके लिए बताते हैं कि यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्यते, यह भूतले घटो नास्ति इति, तदा विशेषण विशेष भाव संबंध। अब इसको अगर बहुत ही संक्षेप में समझें, तो ये जान लीजिए कि जब कहीं पर जो है ना अभाव का ज्ञान होता है ना, तो अभाव के ज्ञान के समय में ये जो छठवां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये होता है। छठवां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कौन है, विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। अब जैसे यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले, चक्षु इंद्रिय से जब भूतल संयुक्त होता है, माने चक्षु इंद्रिय और भूतल में जब संयोग संबंध रहता है, उस समय में उस भूतल में यदि घटाभावो गृह्यते, यदि घट अभाव का ज्ञान होता है, वह ज्ञान कैसा होगा, इह भूतले घटो नास्ति, कि यहाँ भूतल पर घट नहीं है। तो इस तरह का जब ज्ञान होता है चक्षु से संयुक्त भूतल भूतल में जब घटाभाव का ज्ञान होता है तदा विशेषण विशेष भाव संबंध, उस समय में विशेषण विशेष भाव नाम का जो है वह सन्निकर्ष होता है। ठीक है, अब विशेषण विशेष भाव का मतलब क्या होता है, विशेषण भाव और विशेष्य भाव, माने एक में विशेषण भाव रहेगा और दूसरे में विशेष्य भाव रहेगा। यहाँ जो है ना दो चीजें हैं, एक तो भूतल है और दूसरा अभाव है। किसका अभाव, घटा अभाव है। तो इसमें कौन विशेषण है कौन विशेष्य है तो उसको बताते हैं कि तदा चक्षु संयुक्तस्य भूतलस्य घटादि अभावो विशेषणम्। वो जो घटादि का अभाव है वह विशेषण है, कब, जब चक्षु से संयुक्त भूतल होता है। ठीक है, और विशेष्य कौन होगा तो भूतलम विशेष्यम, भूतल जो है वह विशेष्य होता है। अब एक दूसरा भी उदाहरण इसमें देते हैं कि मैंने बताया ना कि अभाव का ज्ञान जब होता है उस समय में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष माना जाता है। तो एक दूसरा भी अभाव का उदाहरण दे रहे हैं कि यदा च मन संयुक्ते आत्मनि, मन से संयुक्त जो आत्मा है उस आत्मा में जब सुखादि अभावो गृह्यते, सुख आदि का, आदि मतलब सुख दुख ईर्ष्या द्वेष प्रयत्न, ये तो सुख आदि का जब अभाव का ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान होगा वो, तो अहम सुख रहित, मैं जो हूँ वो सुख रहित हूँ, इस तरह का जब ज्ञान होता है तदा तब मन संयुक्तस्य आत्मनः सुखादि अभावो विशेषणम्। उस समय में मन से संयुक्त जो आत्मा है उस आत्मा में आत्मा का जो सुखादि का अभाव है वह विशेषण है। यहाँ भी अभाव जिसका होगा वह विशेषण होगा, और वह जो आत्मा है वह विशेष होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर भूतल जो है विशेष्य था और घटादि का अभाव विशेषण था, इसी तरह से यहाँ पर मन संयुक्त आत्मा जो है वह विशेष्य होगा और सुखादि का अभाव जो है वह विशेषण होगा। यदा श्रोत्र समवेते गकारे घत्वा भावो गृह्यते तदा श्रोत्र समवेतस्य गकारस्य घत्वा भावो विशेषणम्। अब एक तीसरा भी अभाव का उदाहरण देते हैं, यदा जिस समय में श्रोत्र में समवेत जो गकार है, मैंने किसी ने गकार का उच्चारण किया और आपने कान से उसको सुना, उस समय में गकार जो ध्वनि जो है वह समवाय संबंध से कहाँ रहेगी, श्रोत्र में रहेगी, तो वह इसी उसी को कहते हैं श्रोत्र समवेते गकारे, माने श्रोत्रेन्द्रिय में समवाय संबंध से स्थित जो गकार है उस गकार में कौन सा धर्म रहेगा, गत्व धर्म रहेगा, गत्व का भाव रहेगा, और दूसरा जो वर्ण है घ उसमें घत्व का तो अभाव ही रहेगा ना। तो वही कह रहा कि सूत्र में समवेत जो गकार है उस गकार में जो घत्वाभावो गृह्यते, घत्व का अभाव जो ग्रहण किया जाएगा ज्ञान किया जाएगा उस समय में श्रोत्र समवेतस्य गकारस्य, श्रोत्र में समवेत जो गकार है उसमें वह गकार वहाँ पर विशेष्य होगा और घत्वाभावो विशेषणम, और घत्व का जो अभाव है वह विशेषण होगा। इस तरह से आपने ये देखा कि जिसका अभाव होता है वह विशेषण होता है और जिसमें अभाव होता है वह विशेष्य होता है। तो इस तरह से जहाँ पर अभाव का ज्ञान हो वहाँ पर विशेष विशेषण विशेषण विशेष्य भाव नाम का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। इस तरह से छह सन्निकर्ष की चर्चा यहाँ पर संपन्न होती है। आज का पाठ यहीं रखते हैं।